नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने उद्यमशीलता के सफर से जुड़े अनुभव साझा करेंगे।
स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश आधारित विकास को सक्षम बनाना था। पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया भारत की आर्थिक और नवाचार संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनकर उभरा है। इस अवधि के दौरान भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला है, जिसमें देश भर में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। भारत 2030 तक $7.3 trillion की अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है, वे न केवल आर्थिक वृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, बल्कि भारत के भविष्य तैयार नवाचार आधारित आर्थिक मॉडल के स्थायी प्रतीक भी होंगे। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के कामाख्या को जोड़ने वाली देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई नई रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। निर्वाचन आयोग ने गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की समय सीमा 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब लोग 19 जनवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। एक पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के अनुरोधों और अन्य प्रासंगिक कारणों पर विचार करने के बाद संशोधित समय सीमा तय की गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगा दी है। हाल ही में कोलकाता स्थित राजनीतिक परामर्श कंपनी IPEC के परिसर और उसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी की कार्रवाई के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को JEE 2026 मेंस के लिए पहले सत्र की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापित तिथियों में से कोई अन्य तिथि आवंटित की जाएगी। परीक्षा की तिथि में बदलाव 23 जनवरी को सरस्वती पूजा समारोह के मद्देनजर किया गया है। महाराष्ट्र के बृहन्मुंबई महानगर पालिका और राज्य के 29 नगर निगम चुनाव के लिए कल हुए मतदान की गणना आज होगी। इस चुनाव में कुल 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 3रे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन बासरा पार्क में होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। पतंग महोत्सव में बड़ी संख्या में दर्शकों के आने की उम्मीद है। इसराइल की राजधानी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इसराइल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। दूतावास ने इसराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय अधिकारियों तथा समय समय पर सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। भारतीय तटरक्षक बल ने अरब सागर में भारतीय समुद्री सीमा पर पाकिस्तानी नौका अल मदीना को पकड़ा है। मछली पकड़ने वाली इस नाव में 9 चालक दल के सदस्य सवार थे। पाकिस्तान की नाव ने भागने का प्रयास किया, लेकिन तटरक्षक बल ने नाव को रोका और उसकी तलाशी ली। इसके बाद नाव को पोरबंदर बंदरगाह ले जाया गया। ICC Under-19 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में भारत ने अमेरिका को डकवर्थ लुइस नियम के अंतर्गत 6 विकेट से हरा दिया। ग्रुप ए के अगले मुकाबले में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी अलग अलग स्थानों पर मंगलवार तक कोहरा छाये रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।